मगर जितनी बार पूजा करते हैं, वो ऐसा नहीं कि अब हम तो रोज ही करते हैं पूजा, वो तो वही वाली पूजा तो है, वो तो हमारी जिनवाणी भी पुरानी हो गई, फटने वाली है। अब क्या वैसे वो बहुमान में कमी नहीं आना चाहिए, वही विनय बनी रहे, वही उत्साह बना रहे, और हर बार पूजा करते समय समझना चाहिए कि ये अपूर्व है। अपूर्व यानी अभूतपूर्व है, क्योंकि कल की पूजा तो कल की थी, आज तो नया दिन है, आज नई तारीख है, नई तिथि है, सब कुछ नया है पूरा। तो फिर आज की पूजा कल की पूजा कैसे हो सकती है? तो एकदम नई पूजा को बिल्कुल नई विनय के साथ, पूरी भावना के साथ करना। तो इस प्रकार विनय संपन्नता होना, ये दूसरी भावना है सोलह करण भावना में। फिर तीसरी भावना, अहिंसादिषु व्रतेषु तत्पर प्रतिपालनार्थेषु च क्रोध वर्जनादिषु शीलेषु निरवध्या वृत्ति शील व्रतेषु नतीजारः। अब देखो ये जो भावना है, शील और व्रतों में अतिचार न लगना लगाना, ये जो व्रती है और शीलवान है वही कर सकता है ना। सभी लोग तो ये भावना नहीं भाएंगे, सोलह कारण भावनाओं में से ये भावनाएं कौन भा सकेगा? अहिंसादिक व्रत जिसके पास है और तत् प्रतिपालनार्थेषु, और उन व्रतों की रक्षा करने के लिए जो क्रोध वर्जन आदि, क्रोध का त्याग है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान ननुवीचि भाषणम च पंच, ऐसे जो भावनाएं बताई ना, उनमें उनको शील कहा है, जिससे व्रतों की रक्षा हो उसको शील कहा है। शील एक होता है ब्रह्मचर्य, लेकिन यहाँ पर शील का अर्थ अकेला ब्रह्मचर्य नहीं है, जितने भी व्रत हैं उनकी सुरक्षा के जो भी उपाय हैं सो शील है। तो इनमें निर्वध्या वृत्ति, निर्दोष प्रवृत्ति करना, माने शील की रक्षा के जो उपाय है उसमें भी कमी नहीं करना और व्रतों के पालन में भी कमी नहीं करना, ये शील व्रतेश्व नतिचार नाम का क्रम है, मतलब तीसरे नंबर की भावना। जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषय सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है कि जीव आदि जो पदार्थ है, स्वतत्व है, माने अपने आत्मा का स्वरूप है, इनके विषय में जो सम्यक ज्ञान है उसमें नित्यम युक्तता, हमेशा लगे रहना, माने इधर उधर कहीं भी ध्यान को न लगाकर इसी में अपना मन लगाए रखना, इसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण मतलब निरंतर उसी में लगा रहना, ये भी तीर्थंकर पद का कारण है, हमेशा स्वाध्याय करते रहने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। पर साथ में ये ऊपर वाली जो भावना थी ना, कौन सी, दर्शन विशुद्धि, वो अनिवार्य, दर्शन विशुद्धि के बिना कुछ नहीं होना। दर्शन विशुद्धि हो तो बाकी सब काम करती हैं, न हो तो फिर अकेली दर्शन विशुद्धि के अभाव में बाकी सब व्यर्थ है। और दर्शन विशुद्धि के साथ बाकी न भी हो तो भी तीर्थंकर पद हो सकता है, इसमें आगे बतलाएंगे। संसार दुखात नित्य भीरुता संवेगन, संसार के दुखों दुख से नित्य भीरुता, निरंतर भीरु रहना, यानी संसार भ्रमण से, चार गतियों के भ्रमण से हमेशा अंदर ही अंदर घबराना कि नहीं मुझे हमें एक भी गति की आवश्यकता नहीं, मुझे तो निर्वाण जाना है। घबराहट होना, संसार में कितना मैं भटक चुका हूँ, कितने जन्म धारण किए हैं, क्या क्या नहीं देखा मैंने, सारे सुख दुख तो मैंने भोग लिए, तो अब मुझे संसार से डर लगता है, इस संसार में मुझे और नहीं भटकना, ये संवेग है। फिर त्यागो दानम, त्याग का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, सोलह कारण भावनाओं में शक्तितस त्याग लिखा ना, त्याग का अर्थ क्या होगा, दान। तत् त्रिविधम, वो तीन प्रकार का दान होगा, आहार दानम अभय दानम ज्ञान दानम चेति, आहार दान अभय दान और ज्ञान दान, इस तरह। ये भी तीर्थंकर पद का कारण है। तत् शक्ति, तो उसको शक्ति के साथ यथाविधि प्रयोज्यमानं त्यागे इति विचित, शक्ति के साथ यथा विधि, विधि के अनुरूप अगर प्रयोज्यमानं आप प्रयोग में लाते हैं, दान करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो त्याग कहा जाता है। फिर इसके बाद तप, तप का अर्थ क्या है, अनिगूहित वीर्यस्य, जिसने अपनी शक्ति को छुपाया नहीं है, ऐसे साधु का मार्गाविरोधी कायक क्लेश है, मार्ग में विरोध न पड़े इस तरह का कायक क्लेश। मार्ग में विरोध न पड़ने का मतलब इतने उपवास मत कर लो कि प्राण निकल जाए, कि फिर धूप में ऐसे खड़े हो गए कि डिहाइड्रेशन हो गए और बेहोश पड़ गए। ऐसी तपस्या नहीं कर रहे हैं। तपस्या ऐसे करो कि जिससे मोक्ष मार्ग में विरोध ना आए, प्रगति हो। तो ऐसा जो काय क्लेश होता है, शरीर संबंधी कष्ट होता है, उसको तप कहते हैं। फिर इसके बाद समाधि शब्द आया है। समाधि शब्द का अर्थ क्या है साधु समाधि का? तो बोले यथा भांडागारे दहने समुत्थिते, जैसे भांडागारे का मतलब खजाने में दहने समुत्थिते, आग पैदा हो गई, तो तत् प्रशमनम अनुष्ठीयते, उसको बुझाने का काम किया जाता है। तो बहुपकारत्वात् तथा नेकव्रतशील समृद्धस्य मुनेस तपस कुतश्चित प्रत्युहे समुपस्थिते, क्योंकि आग को बुझाने से बहुत उपकार होता है और बहुतों का उपकार होता है, क्योंकि बैंक में आग लग जाने पर कितने के पैसे जल जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। तो उसको बुझाने का काम किया जाता है और बुझाने से बहुत लोगों का हित होता है। उसी प्रकार अनेक व्रत और शील से जो समृद्ध है ऐसे मुनि, और उन मुनि के तप में कुतश्चित प्रत्यु है, किसी कारण से अगर प्रत्युहे समुपस्थित, कोई विघ्न पैदा हो रहा है, माने साधु की तपस्या में कोई बाधा उपस्थित हो गई है, तो तत्संधारणम समाधि, उस बाधा को दूर करके उनको फिर तपस्या के मार्ग में बिल्कुल निष्कंटक आगे बढ़ाने का प्रयास करना, इसका नाम है समाधि। कहने का मतलब ये हुआ कि महाराज मुनिराज के तप में अगर कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, उस विघ्न को हटा देना, ये समाधि। फिर गुणवत् दुखोपनिपाते, अब जो गुणवान साधु है या कोई भी अपने सहधर्मी है, उनमें दुखोपनिपाते, संकट आ पड़ने पर या कोई दुख उपस्थित हो जाने पर, निर्वद्येन विधिना तदपहरणम वैयावृत्यम, निर्दोष विधि के साथ उस दुख को दूर हटाना वैयावृत्य है, निर्दोष विधि के साथ उस दुख को दूर करना वैयावृत्य है। जैसे मान लो साधु को बुखार आ गया, अब निर्दोष विधि से कैसे दूर करोगे बुखार? तो उस बुखार को दूर करने के लिए जो साधु जो जिस औषध का सेवन कर सकते हैं, उस प्रकार के औषध पथ्य के साथ उनको देना, ये निर्दोष विधि हो गई। नहीं तो आप ला करके टैबलेट दे दो, कैप्सूल खिला दो, तो फिर मुश्किल हो जाए, तो वो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी। वैयावृत्ति का मतलब जो साधु के आचरण के अनुरूप विधि है, उसके अनुसार उस दुख को दूर करना वैयावृत्ति है। फिर आचार्यादिषु, अर्हत आचार्येषु, बहुश्रुतेषु, प्रवचनेच भाव विशुद्धि युक्तोनुरागो भक्ति। अर्हत और आचार्यों के प्रति, बहुश्रुत यानी उपाध्याय परमेष्ठियों के प्रति, प्रवचन यानी शास्त्रों के प्रति जो भाव विशुद्धि से युक्त एक अनुराग होता है, यानी एक पवित्र प्रेम होता है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है बहुत पवित्र होता है, उसका नाम भक्ति है। उसी प्रकार आचार्य के प्रति जो प्रेम होता है, अनुराग होता है, बहुश्रुत यानी उपाध्यायों के प्रति होता है, और प्रवचन यानी शास्त्रों के प्रति जो होता है अनुराग, उसका नाम भक्ति है। फिर षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम, छह प्रकार की आवश्यक क्रियाएं होती है। किनकी होती है ये आवश्यक क्रियाएं? साधु की या गृहस्थ की या दोनों की? षडावश्यक किन के होते हैं, गृहस्थ के या साधु के या दोनों के? तीन चॉइस है। सही जवाब क्या है? देखो तीन उत्तर हमने दिए हैं, तीन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। साधु के छह आवश्यक साधु के ही होते हैं, गृहस्थों के छह कर्तव्य होते हैं, दानम पूजा, याद है, दान करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, और क्या है, देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने, देव जिनेन्द्र देव की पूजा करना, सिद्ध भगवान की पूजा करना, फिर गुरु उपास्थि, गुरु की उपासना करना, दो हो गए, फिर स्वाध्याय तीसरा, संयम इंद्रिय और मन को वश में रखना, तीसरा। चौथा फिर तप। तप का मतलब जब कभी उपवास है या रस त्याग है, ये सब करते रहना, ये पांचवा हो गया। और छठा जो है दान, ऐसे छह कर्तव्य है, ये आवश्यक नहीं है, कर्तव्य है। और आवश्यक जो है वो मुनियों के होते हैं। नियमसार ग्रंथ में बताया कि जो अवश्य है यानी मन और इंद्रियों के वश में नहीं है, ऐसे साधु की क्रिया को आवश्यक कहते हैं। अवश्य शब्द से आवश्यक शब्द बना है। तो षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम यथा कालम प्रवर्तनम, समय पर उसमें प्रवृत्ति करना। छह आवश्यकों में कौन से छह आवश्यक हैं? सामायिक, 24 भगवान की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये मुनियों के छह आवश्यक होते हैं। कौन से छह आवश्यक होते हैं याद रहेंगे? पहला सामायिक, दूसरा 24 भगवान की स्तुति, तीसरा वंदना, माने वो तीन परिक्रमा वगैरह लगा करके देव वंदना आदि करते, देव वंदना, गुरु वंदना, श्रुत वंदना, ये सब वंदना में आएंगे। फिर प्रतिक्रमण, ये नित्य प्रतिक्रमण क्रिया होती है। सात प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं साधुओं के, तो वो भी एक आवश्यक कर्तव्य है। जैसे दिन का प्रतिक्रमण शाम को करेंगे उसको दैवसिक प्रतिक्रमण कहते हैं, रात का प्रतिक्रमण सुबह करेंगे उसको रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो प्रतिक्रमण होता है वो चतुर्दशी को करते हैं तो उसको पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। अष्टान्निका में चार महीने में आती है अष्टान्निका, तो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। और वैसे आषाढ़ चतुर्दशी को, शुक्ल चतुर्दशी को, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है, लेकिन अभी प्रचलन में भी दीपावली के दिन के एक दिन पहले कर लेते हैं चतुर्दशी, उसको वार्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। कितने हो गए? देवसिक, रात्रिक एक, फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, फिर एक चलते फिरते समय अगर कोई दोष लग जाए तो ईर्यापथ प्रतिक्रमण होता है, ईर्यापथ प्रतिक्रमण। फिर एक औत्तमार्थिक तो लास्ट है, जैसे युग प्रतिक्रमण भी बदला है, 5 साल में सब संघ के साधु इकट्ठे होकर के एक जगह पर बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, उसको युग प्रतिक्रमण कहते हैं। और फिर एक औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण है, औत्तमार्थिक माने संलेखना के समय जीवन भर के सारे दोष गुरु के सामने प्रतिक्रमण पढ़ करके प्रकट करते हैं, औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। एक कोई छूटा है शायद, दैवसिक, रात्रिक, ईर्यापथ, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, औत्तमार्थिक, युग प्रतिक्रमण तो हमने बताया एक जानकारी के रूप में, तो ये प्रतिक्रमण भी एक आवश्यक है। फिर प्रत्याख्यान होते हैं 10 प्रकार के, आहार संबंधी प्रत्याख्यान करते हैं, 4 प्रकार के आहारों का त्याग, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है। स्वाध्याय षट आवश्यकों में नहीं होता मुनियों के, लेकिन छहडाला में लिखा है और उसमें भी लिखा है बुद्धिजन कृत छहडाला में, एक दौलत राम जी वाली छहडाला में भी आया, पर मूल ग्रंथों में कहीं भी ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ। तो 6 आवश्यकों में कायोत्सर्ग, 28 कायोत्सर्ग होते हैं 24 घंटे में साधु के, ऐसे 6 आवश्यक। उसमें अपरिहानि, हानि न होने देना, तीर्थंकर पद में सहायक है, आवश्यक अपरिहानि। फिर ज्ञान तपोदान जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के माध्यम से और जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि द्वारा धर्म की प्रभावना, प्रकाशन करना धर्म का, वो धर्म का प्रकाश फैलाना मार्ग प्रभावना है। फिर वत्स धेनुवत सधर्मणि स्नेह, बछड़े के प्रति जैसे गाय का प्रेम होता है वैसे ही अपने सधर्मा जनों के प्रति स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है। 8 अंगों में तो था ही वो वात्सल्य, लेकिन यहाँ एक विशेष रूप से बतला दिया। विशेष रूप से बतलाने का मतलब ये एक बहुत महत्व की चीज़ है कि अपने धार्मिक जनों के प्रति स्नेह रखना चाहिए, जैसे गाय का बछड़े के प्रति होता है। तान्येतानि षोडश कारणानि सम्यक भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च, वे जो ये 16 कारण हैं वो अच्छी तरह अगर भावित की जाए तो व्यस्तानि, इनमें से कुछ कुछ कर लो तो, समस्तानि च अथवा सारी 16 भावनाएं करो तो भी, तीर्थकर नाम कर्माश्रव कारणानि प्रत्येतव्यानि, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव कारण है ऐसा जानना चाहिए। मतलब ये हो गया कि पूरी 16 न हो तो भी तीर्थंकर हो सकते हैं। श्रेणिक राजा के पास कहाँ थी 16 पूरी, उसके पास तो व्रत भी नहीं थे, उसके पास ये 6 आवश्यक भी नहीं थे, और भी जो कमी थी। अब ये त्याग और तप, त्याग तो ठीक है दान कर सकता था वो और किया भी है, लेकिन तप, तप नहीं था, पर बाकी बहुत अच्छी तरह से उनने भावनाएं भाई हैं। और परिणाम क्या है कि अब अगले 24 में प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक राजा का जीव बनेगा, महापद्म नाम होगा उनका उस समय। इदानी नाम आश्रवाभिधानानंतरम, अब नाम कर्म के आश्रव का कथन करने के पश्चात गोत्राश्रवे वक्तव्य, अब गोत्र कर्म का जो आश्रव है वो बताना चाहिए सती, तो उसका वक्तव्य होने पर नीचेर गोत्रस्याश्रव विधानार्थम इदमाह, नीच गोत्र का जो आश्रव विधान है उसको बतलाने के लिए कहते हैं। पर आत्मनिंदा प्रश्न से सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा, सच्चे हो या झूठे हो, दोषस्योद्भावनम प्रति इच्छा निंदा, किसी भी दोष को प्रकट करने के प्रति जो अपनी इच्छा हो जाती है उसका नाम निंदा है। सिर्फ मुंह से बोलना मात्र निंदा नहीं है, किसी के दोष को प्रकट करने की इच्छा होना भी निंदा है। वो दोष उसमें हो या ना हो ये एक बात की बात है, विद्यमान अथवा अविद्यमान दोष की प्रकट करने की इच्छा का नाम निंदा है। गुणोद्भावनाभिप्राय प्रशंसा, अथवा गुणों को प्रकट करने का जो अभिप्राय है उसका नाम प्रशंसा है। यथा संख्यम अभिसंबंध है, इसका क्रम से संबंध जोड़ना, पर निंदा और आत्म प्रशंसा। सूत्र में क्या लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसा, तो पर का संबंध निंदा से, आत्मा का संबंध प्रशंसा से, तो दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, पर निंदा आत्म प्रशंसा थी, ठीक है। फिर प्रतिबंधक हेतु सन्निधान है, और कोई विरुद्ध हेतु का सन्निधान होने पर सती, अनुद्भूत वृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम, अनुद्भूत वृत्तिता उस चीज को प्रकट न करना इसका नाम उच्छादन है। और प्रतिबंधका भावे प्रकाश वृत्तिता उद्भावनम, और प्रतिबंधक यानी कोई रोक टोक न होने पर प्रकाश वृत्तिता प्रकट करने की वृत्ति होना उद्भावन है। अत्रापि च, और यहां भी यथाक्रम अभिसंबंध, क्रम से संबंध बना लेना, सद्गुणोच्छादनम असद्गुणोद्भावनम इति, जो विद्यमान गुण है उसको उच्छादित करना यानी ढाक लेना बताना नहीं, और जो अविद्यमान दोष है या फिर असद्गुण जो अविद्यमान गुण है उसका उद्भावन करना। तान नेतानि नीचेर गोत्रस्य आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, विद्यमान गुण को ढांक लेना और अविद्यमान गुण को प्रकट करना। विद्यमान गुण क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा 50 रन बना सकते हैं, और फिर अविद्यमान गुण क्या है कि हर बार सेंचुरी पीटते हैं, तो ऐसे झूठे अपनी तारीफ कर देना। मतलब ये तो एक उदाहरण दिया समझ में आने के लिए, ऐसे कोई भी विषय में आप कहीं भी ऐसा करो कि जो विद्यमान गुण है उसको तो छुपा लो और जो असद गुण है अविद्यमान है उसको प्रकट करो, तो तान नीतानि नीचेर गोत्र से आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, वे सारे नीच गोत्र के आश्रव कारण जानने चाहिए। माने इन चेष्टाओं के कारण जीव नीच गोत्र में पैदा हो जाता है। अथोच्चैर गोत्र से क आश्रव विधिरित्रोच्यते, अब उच्च गोत्र की आश्रव विधि कौन सी है, अत्र उच्यते यहां कही जाती है, तद विपर्ययो नीचे वृत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य, वो जो ऊपर आया था उससे विपरीत, और नीचे वृत्ति अनुत्सेक ये उत्तर माने उच्च गोत्र का आश्रम। कैसे तत् इत्यनेन प्रत्यासत्तेर, अब पिछला सूत्र एकदम सबसे करीब था तो तत् शब्द से उसके साथ संबंध जोड़ना है। नीचेर गोत्रस्य आश्रव प्रतिनिर्दिश्यते, नीच गोत्र का जो आश्रव था उसको यहाँ पर समझ लेना। तद विपर्ययो अन्येन प्रकारेण वृत्तिर विपर्यय, उससे अन्य प्रकार की प्रवृत्ति करना विपर्यय है। तस्य विपर्यय तद विपर्यय है, उसका विपरीत तद विपर्यय हो गया। कब पुनरसो विपर्यय, वो कैसा है विपरीत बना, तो बोले कि आत्मनिंदा पर प्रशंसा, अपनी निंदा दूसरों की प्रशंसा। सद्गुणोद्भावनम असद्गुणोच्छादनम च, सही गुण जो है उनको प्रकट करना और जो सही नहीं है उनको प्रकट नहीं करना। गुणोत्कृष्टेषु, अब नीचे वृत्ति का अर्थ क्या है, गुणों में जो उत्कृष्ट है उनके प्रति विनयेन अवनतिर, विनय पूर्वक अवनति का मतलब झुकना, नीचे वृत्ति। फिर विज्ञान आदिभिर उत्कृष्टस्यापि, ज्ञान आदि की अपेक्षा से भी जो उत्कृष्ट है, सतह होते हुए भी मतलब खुद ज्ञान आदि के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है, बाकी लोग उनके सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं, तो भी स्वयं ज्ञानवान होते हुए भी तत्कृत मद विरह, उस ज्ञान से उत्पन्न किए गए मद का विरह होना माने अभाव होना, अनहंकारता अहंकार न करना, अनुत्सेक, ये अनुत्सेक है माने ज्ञान आदि खूब है उसके पास लेकिन फिर भी अभिमान लेश मात्र भी नहीं है, ये उच्च गोत्र का कारण है। तान्येतानुत्तरस्य उच्चैर गोत्रस्य आश्रव कारणानि भवन्ति, वे जो सारे ये कारण गिनाए हैं ये उच्चैर गोत्र मतलब ऊंची गोत्र के आश्रव कारण होते हैं। अथ गोत्रानन्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य आश्रवा आश्रव इति उच्यते, अब गोत्र के आखिरी में बाद में कहा गया जो अंतराय कर्म है उसके आश्रव कौन है, तो कुछ कहते हैं विघ्नकरण मंत्रायस्य, विघ्न करना अंतराय का आश्रव है। दानादीन युक्तानि, दान आदिक जो है वो पहले बतला चुके हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च इत्यत्र, यहाँ बतलाया था दूसरे अध्याय में। तेषां विहननम विघ्न, उनमें विहनन करना मतलब बाधा डालना विघ्न है। विघ्नस्य करणम विघ्नकरणम, विघ्न का करना विघ्नकरण है। अंतरायस्य आश्रव विधिर वेदितव्य, ये अंतराय के आश्रव विधि जान लेना। अत्र चोद्यते, यहाँ पर कुछ शंका समाधान कर रहे हैं। तत्प्रदोष निन्नवादयो ज्ञान दर्शनावरणादीनाम प्रतिनियतता नियता प्रतिनियता आश्रव हेतु वर्णिता, कि वहाँ पहले एक सूत्र आया था तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराय, एक सूत्र था ना, तो वो ज्ञान और दर्शनावरण आदि के लिए प्रतिनियत आश्रव के हेतु बताए थे, किंते प्रतिनियत ज्ञानावरणाद्याश्रव हेतव एव उत अविशेषेणेति, क्या वो निश्चित रूप से ज्ञान और दर्शनावरण के ही आश्रव हेतु होते हैं या फिर समान रूप से होते हैं, तो फिर आगे कह रहे हैं कि यदि प्रतिनियत ज्ञानावरणाद्याश्रव हेतव एव आगम विरोध प्रसज्यते, यदि निश्चित रूप से वो ज्ञान और दर्शनावरण के आश्रव हेतु होंगे तो फिर आगम से विरोध का प्रसंग आ जाएगा। आगमे ही सप्त कर्माणि आयुर्वर्ज्यानि प्रतिक्षणम युगपद आश्रवंती इति उक्तम, आगम में क्या कहा है कि आगम में सात कर्म आयु को छोड़कर प्रतिक्षण एक साथ आश्रव को प्राप्त होते हैं, तद विरोध स्यात्, इसलिए विरोध आ जाएगा। अथ अविशेषेण आश्रव हेतु वो विशेष निर्देश न युक्त इति, अब अगर समान रूप से ये आश्रव के हेतु हों तो फिर अलग से इनका कथन नहीं कर सकते आप कि ऐसे ऐसे ये सब इसके कारण है, इस कर्म के बंध के आश्रव के कारण है, ये शंका उनने अंत में कर दी। ये सब पूरा वर्णन हो गया ना, आठों कर्म के आश्रव बताने के बाद अंत में किसी ने शंका की कि ये सब जो आपने कारण बतलाए हैं तो ये कारण क्या निश्चित रूप से उन्हीं उन्हीं कर्मों के हैं, क्योंकि उस समय तो बाकी सारे कर्म बंध रहे हैं सात कर्म, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव इनसे होते हैं, क्योंकि वो कार्य करते समय जैसे मान लो उसने किसी के ज्ञान में बाधा डाली तो ज्ञानावरण का बंध होने लग गया, तो फिर उस काल में उसको दर्शनावरण का भी बंध हो रहा है, अंतराय का भी बंध हो रहा है, और वेदनी मोहनी आदि सबके बंध हो रहे हैं, सिर्फ आयु को छोड़ दो, और कदाचित आयु का भी बंध हो रहा हो, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन कारणों से इन्हीं कर्मों का बंध होता है। शंका समझ में आई, नहीं आई। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है और किसी ने जोर से रिकॉर्ड प्लेयर चालू कर दिया, कोई सीडी प्लेयर चालू कर दिया, अब पढ़ के बताओ बेटा अब क्या पढ़ोगे तुम तो इससे क्या हुआ, विघ्न आ गया उसके लिए। तो अब शंकाकार ये कह रहा है कि अगर ऐसा करने से, सिर्फ विघ्न डालने से अंतराय कर्म का बंद होता है, तो अंतराय कर्म का जिस समय बंद हो रहा है उस समय तो ज्ञानावरण का भी हो रहा है। सात सात कर्मों का एक साथ बंद होता है, शास्त्रों में आया है कि एक साथ सात कर्मों का बंद होता है। तो फिर अगर उसके सीडी प्लेयर चालू करने से अंतराय का आश्रय होता है ऐसा आप मानते हो, तो फिर शास्त्र से विरोध आ रहा है। मैंने आपका मानना गलत है, क्योंकि आप कह रहे हो कि ऐसा करने से अंतराय का बंद हो रहा है और शास्त्र कह रहा है कि हर समय सात कर्मों का बंद होता है। ठीक है ना, शंका ही होगी। तो आचार्य कहते हैं अत्र उच्यते, यहां हम ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि तत्प्रदोष आदिभिर ज्ञानावरण आदि नाम सर्वासाम कर्म प्रकृति नाम प्रदेश बंध नियमो नास्ति। बोले कि ठीक है, इन चेष्टाओं के माध्यम से ज्ञानावरण आदि सभी प्रकृतियों की प्रदेश बंध संबंधी नियम नहीं है। माने कितनी क्वांटिटी में सब कर्म तो आ ही रहे हैं एक साथ आत्मा में बंध रहे हैं, तो उसका नियम नहीं है। तथापि फिर भी अनुभाग नियम हेतुत्वेन तत्प्रदोष निन्नवादयो विभज्यन्ते। क्या होता है कि इन कारणों से जो कर्म यहां पर बतलाया गया ना, विघ्न करने से अंतराय कर्म की शक्ति ज्यादा पड़ेगी, ज्ञानावरण आदि की शक्ति ज्यादा नहीं पड़ेगी उस समय। ज्ञानावरण आदि बंधेंगे जरूर, लेकिन जिस क्रिया से यहां जिस कर्म का बंध बताया वो अधिक शक्तिशाली होगा, ऐसी चेष्टा करते समय उस कर्म में शक्ति ज्यादा होगी। ये इसका उत्तर हो गया। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संघिनी क्या षष्ठोध्याय। इस प्रकार तत्वार्थ की जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब टीका, क्या नाम है उसका, सर्वार्थ सिद्धि संघनिकायम, सर्वार्थ सिद्धि उसकी संज्ञा है, उसमें षष्ठोध्याय छठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसको हिंदी में भी छठा बोलना चाहिए, छठवानी छठा, छठवा जो पढ़ते हैं ना कई लोग षष्ठमोध्याय बोलते हैं, षष्ठमो तो बनता ही नहीं कोई शब्द, षष्ठ शब्द होता है, षष्ठमो नहीं, सप्तमो बनता है पंचमो बनता है, लेकिन षष्ठो षष्ठमो नहीं बनता है,